जो उनके प्रतिनिधि हैं उन लोगों को, वैष्णवों को प्रसन्न करना बस। अगर वैष्णव प्रसन्न हो जाए तो विष्णु प्रसन्न है। जैसे पेट को प्रसन्न करना है तो डायरेक्टली पेट में कुछ खाना नहीं डाला जा सकता, मुंह के द्वारा डाला जाता है। तो वैष्णव अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं और डकार मारते हैं तो समझ लेना कि विष्णु प्रसन्न हो गए। तो वैष्णवों को प्रसन्न करो उस दिन, विष्णु आराधनार्थ आए। और दूसरा, स्वपुत्रस्य उदयाय च। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि ये सारे वैदिक रीति रिवाजों का उद्देश्य क्या है, स्पेशली जन्मदिवस के दिवस पर एक बार बोल रहे थे। वो बोले, दिस इज सिंपली टू इन्वोक एज मच ऑस्पिशियस ब्लेसिंग्स ऑन द पर्सन ऑफ द डे, जो भी मतलब उसको, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस जो भी है जिसके, क्या बोलते हैं, आज के शाम उस व्यक्ति के नाम। जिस व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई शादी, किसी की शादी हो रही है, किसी का जन्मदिवस, टू इन्वोक मैक्सिमम ऑस्पिशियस ब्लेसिंग्स फॉर द रियल वेलफेयर ऑफ द पर्सन। स्वपुत्रस्य, नंद महाराज का करने का उद्देश्य था कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो, और दूसरा ये सारे ब्राह्मण लोग जो आए हैं अपने मौजूदी से, अपने वचनों से इस बच्चे को आशीर्वाद दे, मेरे बच्चे को, ताकि ये सुखी रहे, सच्चा सुख, सच्चा आनंद इसको प्राप्त हो। बस तो मेरा कर्तव्य हो गया, मेरा ये उत्सव का उद्देश्य हो गया। विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च, इसलिए बस टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड टू इन्वोक एज मच ऑस्पिशियस ब्लेसिंग्स ऑन द पर्सन फॉर हुम द प्रोग्राम इज अरेंज्ड, वॉट एवर द फंक्शन इज अरेंज्ड, कोई भी वैदिक क्रिया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज, तीसरा चीज जो उसी श्लोक में, पीछे कुछ श्लोकों में आता है कि जीवन को शुद्ध करना जीवन का उद्देश्य है। हर एक चीज को शुद्ध करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है टू प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस। एक बार चंद्रमौली महाराज लेक्चर दे रहे थे हमारे यहां भागवत क्लास में, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले, मूल्यवान चीज क्या है? रेयर थिंग्स, कभी कभी कुछ चीज बहुत रेयर है, कभी मिलता ही नहीं है वो, तो लोगों को लगता है अगर कोई चीज बहुत दुर्लभ है तो वो बहुत मूल्यवान है और उसको बहुत पैसा देके लोग खरीद सकते हैं। पर बोले नहीं, दुर्लभ चीजें मूल्यवान हो ऐसे जरूरत नहीं है, कुछ बीमारियां भी हैं जो बहुत दुर्लभ है। खास रॉयल फैमिली में, ब्रिटिश रॉयल फैमिली में हीमोफीलिया नाम का एक बीमारी होता है, वेरी रेयर। ऐसा नहीं है कि काश मैं थोड़ा पैसा दूंगा मुझको भी हो जाए। नहीं, बोले रेरिटी इज नॉट वैल्यूएबल, व्हाट इज रियली वैल्यूएबल इज प्योर प्यूरिटी। अगर शुद्ध चीज मिले वो बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि कलयुग में सब अशुद्ध है। शुद्ध पानी, शुद्ध घी, शुद्ध 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 हवा, शुद्ध चीज मिलना बड़ा मुश्किल है। पर वैदिक संस्कृति के जो लोग पालन करते हैं उनको यह मालूम था कि हर एक चीज को शुद्ध करने का तरीका क्या है, उन लोगों को मालूम था। दैट इज वैदिक कल्चर, हाउ टू प्यूरिफाई एवरीथिंग। क्यों क्यों शुद्ध चीज चाहिए? बिकॉज इफ इट इज कंटेमिनेटेड, इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड थिंग्स यू गेट डिजीज्ड। अगर अशुद्ध चीजों के संपर्क से आओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, और हमको बीमारी से मुक्त होना है इसलिए शुद्ध चीज चाहिए हमको। और वो कहते हैं, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जजा शुद्धंति दान ही संतुष्टिया द्रव्याणी ही आत्मा आत्मविद्यया। अलग अलग चीजों को शुद्ध करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे इस करताल को शुद्ध करना है तो क्या करेंगे, इसको साफ करना है तो क्या करेंगे। शुद्धता का मतलब है किसी भी वस्तु को अपने मूल स्थिति में लाना। जब मूल स्थिति में नहीं है तो वो दूषित हो गया है, उस पर आवरण, दोष का आवरण आ गया है। तो शुद्ध मतलब उस आवरण को हटाकर उस वस्तु को अपने मूल स्थिति में लाना, मूल स्थिति में लाना। तो कालेन, कुछ चीजें काल के प्रभाव से शुद्ध हो जाती है। मैं थोड़े दिन पहले फार्म में गया था, वहां बता रहे थे खेती, गोकुल धाम में वो बता रहे थे कि जब खेती करने के बाद कभी कभी उनको 3 महीने के लिए उस खेत को खाली रख दिया जाता है। एक बार दो बार उसमें से फसल निकाल लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दो उसको, ताकि वो फिर से उसमें जान आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा वो। तो कालेन, कुछ चीजें काल के स्वभाव से अपने आप शुद्ध हो जाता है, छोड़ दो उसको ऐसे ही तो शुद्ध हो जाएगा। कालेन, अच्छा कुछ चीजें स्नान, शरीर को स्नान करने से शुद्ध होता है। हर बार हम बाहर जाते हैं धूल से पसीने से अशुद्ध हो जाता है शरीर, तो स्नान, कुछ चीजें शरीर को स्नान से शुद्ध हो जाता है। कालेन स्नान शौचाभ्याम, कुछ चीजों को साफ करने से, पानी से या साबुन से साफ करना चाहिए, हर एक चीज को नहीं, कुछ चीजें। ऐसा नहीं कि आपका टेलीफोन खराब हो गया तो गर्म बकेट बकेट भर पानी में साबुन मिलाइए और टेलीफोन को डुबा के रखिए ऐसा कुछ चीजों को पानी से धोया जाता है। कालेन स्नान शौचाभ्याम, तपसा, तपस्या के द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो एकादशी के दिन हम लोग तपस्या करते, क्या करते, खाते नहीं जितना हो सके उतना, तो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है शरीर। और ये सही है, रूपा जी लिखते हैं उपदेशामृत में कि ज्यादा से ज्यादा सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती है, और ये क्या बोलते हैं, एकादशी के पालन करने से कभी आदमी ज्यादा बीमारी नहीं पड़ता, कम से कम बीमार पड़ता है जितना हम सख्ती से उसको पालन करेंगे। तो तपसा, इंद्रियों से, इंद्रियां शुद्ध होती है तपस्या से। तपसा इज्जया, पूजा करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं, पूजा पाठ करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं। और किसी को सामग्री को पूजा में भगवान की, जब फूल है उसको अगर भगवान को अर्पण कर दो तो शुद्ध हो गया हो, निर्माल्य शुद्ध हो जाता है वो। तो कुछ चीजें भगवान इज्जया, भगवान की सेवा में लगाने से शुद्ध हो जाता है। इज्जया शुद्ध्यन्ति दानै ही, पैसा, और पैसा क्या दूषित होता है, अभी अभी बैंक नोट फ्रेश आया महाराज ये शुद्ध है एकदम फर्स्ट क्लास, नहीं कमाने में, अनजाने में, जाने में कुछ ऐसी पाप कर्म हो जाते हैं और वो अशुद्ध है, भले वो एकदम क्रिस्प नोट रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बट उसमें सूक्ष्म कर्म के अशुद्धि है। और दान देने से पैसा शुद्ध हो जाता है, उसको साबुन से घिसना नहीं दान देने से पैसा शुद्ध हो जाता है, धन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए एक व्यक्ति कोई बता रहे थे कि कुछ लोग मनु संहिता के विरुद्ध हैं, मनु संहिता को जला लिया लोगों ने, ये कहते हुए कि वहां जात को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, ये ब्राह्मण है ये शूद्र हैं। और एक्चुअली आप मनु संहिता पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है, दूसरों को बताया गया है कि तुम लोग ब्राह्मणों को दान नहीं दोगे, दोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा खतरनाक वर्णन किया गया कि देखिए हिल जाएगा कोई आदमी, बोलेगा तुरंत कोई भी ब्राह्मण पकड़ के लाओ दान दो ऐसा पहला हिस्सा में मनु संहिता में। और दूसरे हिस्से में ब्राह्मणों को बताया गया है तू अगर दान लिया तो तू नरक में जाएगा। देखिए सोसाइटी को इतना सुंदर से बैलेंस करके रखा है, अगर तू उसकी पूजा नहीं करेगा तो तू नरक में जाएगा, और जो पूजा स्वीकार कर रहा है बोलता है तू उसको अपना समझा तो तू भी नरक में जाएगा। तो दोनों डर डर के कर रहे हैं, प्रभु ले लो, हाँ बोले ले तो रहा हूं पर तुरंत लेके जिसके लिए लगाना उसको लगा दो, जितना ज्यादा पकड़ के रखोगे उतना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हो सकती है. वी आर सिंपली वाया मीडियम. तो इस तरह से बहुत सुंदर से बैलेंस किया गया है. तो शुद्ध्यंति दान ही, दान से धन शुद्ध हो जाता है. शुद्ध्यंति दान ही संतुष्टिया. अच्छा, मन कैसे, मन का बीमारी क्या है, मन का रोग, मन का दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, मन की कंटेमिनेशन, दोष है. और उस दोष को कैसे शुद्ध किया जाए? संतुष्टिया. जिस स्थिति में भी भगवान ने हमको रखा है उसमें संतुष्ट रहना सीखो. संतुष्ट रहने से अपने आप काम, क्रोध, लोभ चला जाता है. तो इस तरह से वैदिक संस्कृति में इट्स ए रिफाइंड साइंस ऑफ हाउ टू प्यूरिफाई एवरीथिंग फ्रॉम इट्स कंटेमिनेशन एंड यूज एवरीथिंग विदाउट गेटिंग कंटेमिनेटेड. जैसे एक डॉक्टर, एक एक्सपर्ट डॉक्टर, उसको पेशेंट देख रहे तो जाना ही है, स्किन एंड वीडी डिपार्टमेंट समझ लीजिए, तो जाना ही है उसको. और सबको बीमारी है, पूरे बीमारी है, तभी तो आया है हॉस्पिटल में. तो अगर डॉक्टर कहेगा कि नहीं, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो फिर उसका डॉक्टर का कर्तव्य नहीं कर रहा है वो. पर अगर अंदर गया तो दोष, दूषित होने की संभावना ज्यादा है. तो इसीलिए सबसे पहले सीखता है डॉक्टर कि ये बीमारी फैलती कैसे है और ये किस प्रकार से, ये क्या बोलते हैं, कंटेमिनेशन फैलता है, वो ज्ञान समझ लो. और फिर टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, मास्क लगाता है, ये लगाता है, क्या बोलते हैं, ग्लव्स, और फिर जाके परीक्षा करता है. और तुरंत परीक्षा करने के, जाने से पहले प्रिकॉशन लेता है और आने के बाद तुरंत सब हटाकर, मास्क वास हटाकर फिर से साबुन से हाथ धो के बाहर निकलता है. इस तरह से आत्मा, हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध थे भगवत धाम में जब थे, और वहां से इस संसार में आए हैं जहां सब कुछ अशुद्ध है. एक्चुअली भगवान की सृष्टि में पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णा, भगवान की सृष्टि में कोई अशुद्ध नहीं है, पर अशुद्ध हो गया है. हमारे हृदय में अशुद्धि के कारण हमने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है. पर दुर्भाग्यवश उस दूषित वातावरण में हमको रहना ही है. और वैदिक संस्कृति सिखाता है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं बनो और एक कमल के पत्ते के समान पद्मपत्रम इवाम्बसा, कैसे ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र. अलिप्त होकर संसार में रहते हुए, दूषित वातावरण में रहते हुए भी उस दोष से अलिप्त रहकर अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करो. और अंत में कहते हैं संतुष्टिया. जन्म कैसा शुद्ध, हां, द्रव्याणी ही आत्मा आत्मविद्या. आत्मा कैसे, आत्मा का दोष क्या है? अहंकार. और अहंकार कैसे दूर हो? आत्मविद्या. आत्मविद्या मतलब सबसे श्रेष्ठ राजविद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, वो है राजविद्या, यानी भक्ति. तो भक्ति से आत्मा शुद्ध हो जाता है. और अंत में कहते हैं, आज के संबंधित कहते हैं, जन्म कैसे शुद्ध हो? जन्म शुद्ध होता है संस्कारों के द्वारा. संस्कार के द्वारा जन्म शुद्ध हो जाता है. तो ये बहुत सारे संस्कार है, ये संस्कार, जातक संस्कार, विवाह संस्कार, संस्कार संस्कार, संस्कृत, संस्कृत मतलब रिफाइंड, शुद्ध हुआ चीज. तो इस तरह से संस्कार ही तपसा इज्जया. तो ये तीन कारण बताया गया है. नंद महाराज जानते थे कि किस हरेक जन्म को कैसे शुद्ध किया जाए संस्कारों के द्वारा. तुरंत उन्होंने जातक संस्कार किया और बहुत बड़े पैमाने पे विष्णु आराधनार्थाय, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और स्वपुत्र से उदयाय च, अपने पुत्र पर सबसे ज्यादा लोग आशीर्वाद दें, उसको मंगलमय आशीर्वाद मिले ताकि वो सुखी रहे. ये प्रेम का लक्षण है. जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि सब उसकी भला हो, उसका सब अच्छा से अच्छा हो. तो इस भावना से उन्होंने ये संस्कार अच्छी तरह से मनाया. और इसी तरह से आज श्याम सुंदर प्रभु और कमल मंजरी माता, ये एक्चुअली ये सारा परिवार भगवान के चरण कमलों के नीचे ही निवास कर रहे, राइट अंडर द फीट, गोपीनाथ जी के चरण कमलों में. बहुत सारे पूरे के पूरे परिवार, ये सबूत क्या है? सबूत क्या है कि सब वैष्णव लोग यहां आए हैं. दिस इज ए प्रूफ दैट एवरीवन लव्स, सब लोग इतने इस परिवार को प्रेम करते हैं, इनकी सेवा से तृप्त हैं, प्रसन्न हैं कि उनके उन्होंने प्रेम से बुलाया, जिसको हम अपने लोग समझते उनको बुलाए और उसका अपनापन प्रकट किया, कैसे सब लोग आए. एक्चुअली आना मतलब ही आशीर्वाद दे दिया. और अब इन्होंने अपना चेष्टा किया सबको प्रसन्न करने के लिए ताकि सब आप लोग प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे इस बच्ची पर, मंगलमय आशीर्वाद. और निश्चित रूप से जहां वैष्णव लोग एकत्रित होकर, हाँ, तो मेन चीज क्या होना चाहिए? दो चीज होना चाहिए. विष्णु आराधनार्थ आया. और आज इस कलयुग में आराधना कैसी होती विष्णु को प्रसन्न है? संकीर्तन के द्वारा. तो हर कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम में कम से कम संकीर्तन होना चाहिए, संघ में आकर कीर्तन. यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंती, भगवान की यज्ञ पुरुष यज यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोको एम कर्म बोले, यज्ञ पुरुष यानी विष्णु. और विष्णु को प्रसन्न करना कलयुग में वैष्णवों को साथ लाके हरिनाम करना, और दूसरा है वैष्णवों को प्रसन्न करना, मतलब अच्छा प्रसाद खिला. तो वैष्णव लोग क्या है, ज्यादा डिमांड नहीं करते, थोड़ा प्रसाद से प्रसन्न हो जाते. एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है, पर वैष्णवों को प्रसन्न करना अल्प तृप्त है, वो थोड़े में ही तृप्त हो जाते. पर ठीक है, बहुत थोड़ा सम्मान दिखाया, थोड़ा प्रणाम किया, तो प्रसाद हो गया. संडे फिश ऑलरेडी लेके आया हूं, ठीक है. थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ, पर एक्चुअली प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद मिल गया. तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि कृपया आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, न केवल रेवती पर छोटी बच्ची, बल्कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं इधर जिनका ये बच्चा है. और इस तरह से हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय. तो अभी कीर्तन ज्यादा करना, इसीलिए बोलना कम किया मैंने. अभी कीर्तन करेंगे इस भावना से कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं रेवती को.